بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلناه والله بما تعملون خبير. کہ ارشاد ہوا کہ اس سورۃ تغابن کی 8ویں آیت کے اندر کہ ایمان لاؤ اپنے اللہ پر اور رسول پر اور اس نور پر جس کو ہم نے تم پر نازل کیا، واللہ بما تعملون خبیر، اور خدا اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو، جو عمل انجام دیتے ہو، اس سے آگاہ ہے. تو ایزان محترم، کل اسی مطلب پہ ہماری گفتگو رکی تھی، اسی نور کے مسئلے پہ، کہ یہ نور جسے خدا اس آیت کے اندر بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے اس نور کو نازل کیا. یہاں پہ تھوڑا سا غور کرنے کی کوشش کی گئی، ایک اجتماعی لحاظ سے، اگرچہ بہت زیادہ تھوڑا بہت رسپانس آیا تھا کہ آخر یہ کس طرح سے وہ نور ہے اور کس طرح سے ہماری زندگی کو نورانی بناتا ہے. کہ جب بالآخر ایک نور کو خدا نے نازل کیا ہے قرآن کی صورت میں، تو اس کا اثر ہونا چاہیے ہماری زندگی میں، ہمارے دلوں کو اور ہمارے جامعے کو، معاشرے کو، اس کو نورانی بنانا چاہیے اگر واقعی ایک نور ہو، اور جس کو اگر اپلائی کیا جائے، اس کو نافذ کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، تو بالآخر اس کا ایک اثر ہونا چاہیے نورانی بنانے کا اور ہمارے دلوں کو منور کرنے کا. تو دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے یہ اس نور کا مطلب کیا ہے اور کس طرح سے نورانی بنتا ہے ہمارا، ہم اپنا وجود کس طرح سے نورانی بنتا ہے، منور ہوتا ہے، اور کس طرح سے ہمارے معاشرے جو اگر قرآنی ہو جائیں تو وہ پھر کس طرح سے منور ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں سے تھوڑی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگ تھوڑا ساتھ دیں، کہ ذرا سوچا جائے کہ کس طرح سے یہ نورانیت سے کیا مراد ہے اور کیسے ہمارے معاشرے اور ہمارے اپنا وجود جو ہے وہ نورانی ہو سکتا ہے. یعنی ایک دفعہ ہم فقط کہہ کے گزر جائیں کہ ہاں، خود قرآن نور ہے اور منور کرتا ہے اور تمام چیزیں، اور اس پہ لیکن اس کے جب مصادیق پہ جب تک ہم زیادہ غور نہ کریں، شاید بہت زیادہ واضح انداز سے چیز سامنے نہ آئے. اس کو اس طرح سے بیان کرنا کوشش کروں کہ ایک انسان جو جس معاشرے میں مثلاً قرآن نازل ہوا ہے، یا جن لوگوں پہ قرآن نازل ہوا ہے، ان کی زندگی میں اور ان لوگوں کی زندگی میں جو لوگ قرآن سے استفادہ نہیں کرتے اور اس قرآن کی اس نعمت سے محروم ہیں، تو اس میں کوئی فرق ہونا چاہیے نہیں کہ ہم کہیں کہ ہاں، قرآن کی وجہ سے اس طرح سے نورانیت آتی ہے، اور جہاں پہ قرآن نہیں ہے یا اس پہ عمل نہیں کیا جاتا، وہاں پہ یہ ظلمت یا تاریکی پائی جاتی ہے. تو کس طرح سے ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں؟ اس وقت سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم اس کا کمپیریزن کریں کہ یہ نور کیسے آ کے کن کن چیزوں پہ جو ہے اپنی نورانیت کا، یعنی اس لائٹ کو جو ہے وہ، ہدایت کی جو روشنی ہے، اس کو کہاں کہاں کس طرح سے جو ہے وہ پھیلاتا ہے اور کس جگہ پہ فوکس کرتا ہے، کن چیزوں پہ جو کہ جہاں پہ ظلمت پائی جاتی ہے، تاریکی پائی جاتی ہے، اس کا تبدیل کر دیتا ہے روشنی میں. اب پھر وہ کس طرح سے ہماری زندگی اس کے اندر یہ چیزیں ریفلیکٹ ہوتی ہیں، اس کے اندر سامنے آتی ہیں. تو وہ جو فرق ایک زندگی ہے ظلمانی کا، ایک زندگی ہے تاریخ کا، اور ایک زندگی نورانی کے درمیان، ہم اس ظاہر میں اور اس عملی دنیا کے اندر کس طرح سے فرق نظر آتا ہے. تو اگر اب بھی جو ہے، میں تو آپ لوگوں سے بھی کہوں گا کہ آپ تھوڑا سا یہ کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کریں کہ قرآن میں کس طرح سے یہ کام ہوتا ہے. اب میں تھوڑا سا اس کو اسٹارٹ کرتا ہوں، شاید یہ بات اسٹارٹ ہو تو آپ لوگوں کے ذہن میں بھی کچھ چیزیں آنا شروع ہو جائیں. تو میں ایسے ہی اس کو سوچ رہا تھا کہ کس وہ کون کون سی چیزیں ہیں اہم اہم، ویسے بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن جو اہم اہم چیزیں جو میرے ذہن میں آئیں ایک سرسری نگاہ پہ اور ایک تھوڑا سا اپنے ذہن میں ریویو کیا، تو کچھ ایسے پوائنٹس ذہن میں آئے کہ جہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن اس طرح سے ہماری زندگی کو اور ہمارے دل و دماغ کو، ہمارے اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کو کیسے منور کرتا ہے. تو اگر ہم دیکھیں کہ مثلاً قرآن ہمارے اپنے بارے میں کیا کہتا ہے، انسان کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس چیز کو جو ہے، ان تعلیمات کو اگر دیکھا جائے، تو ایک واضح فرق نظر آتا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو قرآن کو یا اسلام کو، کہ قرآن ریپرزینٹ کرتا ہے دین اسلام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو، تو جو لوگ ان تعلیمات سے محروم ہیں، ان کی زندگی میں کا جو انسان ہے وہ کیا ہے، اور ہمارا اسلام کا انسان، قرآن کا انسان وہ کیا ہے. تو کس طرح سے جو ہے وہ قرآن آتا ہے اور ان واقعیات کو، یعنی اس روشنی کے ذریعے سے ہر چیز کو جو ہے واضح کر دیتا ہے، और हर चीज अपनी जगह पे जैसी वो है वैसी नजर आने लगती है। कल जिसमें से बयान हुआ था कि नूर का काम क्या होता है, खुद भी रोशन होता है और दूसरी चीजों को भी रोशन कर देता है अपने अतराफ में जो कुछ भी है। तो इस रोशनी का फायदा क्या होता है, जब हर चीज उस एक जगह पे रोशन हो जाए तो हर चीज हमको सही तरह से उसके सही अंदाजे के मुताबिक, सही उसकी पोजिशन के मुताबिक, उसकी सही जो जो उसकी वैल्यू होनी चाहिए, जो उसकी अहमियत होनी चाहिए, उसके मुताबिक वो हमको वो चीज़ें नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो इंसान भी ऐसे ही है, इस पूरे कायनात के अंदर इंसान का क्या मकाम है और इंसान को किस तरह से जो है कुरान दिखता है, ये भी हमको उस रोशनी के अंदर सही फिर हमको नजर आएगा कि अच्छा इंसान ये है, ताकि हम इंसान के साथ वही रابطہ फिर रखें और इंसान को अपने आप को उसी तरह से समझें। तो कुछ आयात अगर इस हवाले से हम देखने की कोशिश करें, तो मैंने चूंकि उसको बहुत हैप हैज़र्ड उसमें जो है एक जगह जमा किया, देखा अगर मुझे सही मिल जाए। मसलन उस जहाँ पे कुरान के अंदर ये इरशाद होता है कि सूरह हाँ सूरह फातिर के अंदर सूरह की 15वीं आयत है जिसमें इरशाद होता है, या अय्युह नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनीयुल हमीद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंसान को किस तरह से बयान किया जा रहा है, ए इंसान, बल्कि तमाम जितने भी मखलूकात हैं लेकिन खास फोकस किया जा रहा है इंसान को कि तुम क्या हो, फकीर हो खुदा के सामने, खुदा के मोहताज हो, और खुदा है कि जो हम गनी और हमीद है, कि जिससे जो गनी हर किसी से और जो है उसको किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम लोग सब तुम्हारे वजूद के जो अगर उसको डिफाइन किया जाए तो उसकी डेफिनेशन के अंदर ही जो है फकर पाया जाता है। ये ऐसे तमाम मौजूदा जो है खुदा के अलावा जितने भी हैं उनकी हकीकत इससे जुदा नहीं हो सकती, उसके अंदर फक्र जब तक ना हो तो इंसान अपनी हकीकत को नहीं समझ सकता। जैसे ही इस हकीकत को भूल जाएगा तो अपने आप को खुदा के मुकाबले में लाना शुरू कर देगा, लेकिन अगर इस हकीकत को अपने सामने रखेगा तो उसको समझ में आएगा अच्छा मेरी इस पूरे कायनात के अंदर जो वैल्यू है और जो मेरा मकाम है वो क्या है। तो उसको जो मकाम दिया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि तुम जो है फकीर हो और तुम्हें जो अपनी ज़रूरत को पूरा करना है, किससे पूरा करना है, वो जो कि बेनियाज है, वो जो कि गनी है। तो इंसान अगर इस मतलब को अपने जहन में रखे तो अब देखें वो शख्स जो कि खुदा को भूल जाए और अपने आप को जो है वो सब कुछ समझने लगे कि जो कुछ मैं करना चाहूँ कर सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है और अब मेरी अकल जो है मुझे गाइड कर सकती है, मुझे और इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं उसकी ज़िंदगी में, और वो जो कि हर चीज़ में अपने आप को खुदा के सामने फ़कीर समझेगा, तो उसके अंदर जो तवाज़ु आएगा, उसके अंदर जो इबादत और इबूदियत का जो कॉन्सेप्ट आएगा वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होगा उस शख्स के मुकाबले में जो अपने आप को, और फिर यही शख्स जो कि फकीर अपने आप को समझेगा और देखेगा कि मैं मेरा फ़क्र कहाँ से बरतरफ हो सकता है, खुदा की ज़ात से, बस वो खुदा के जिस जो गनी है और वो सब कुछ कर सकता है। फिर उसकी बाकी सिफात को जब कुरान में देखेगा तो उसकी ज़िंदगी में जिस तरह से कल भी बाज़ दोस्तों ने इशारा किया कि फिर उसकी ज़िंदगी में तवक्कुल आएगा, उसकी ज़िंदगी में से जो है वो नाउम्मीदी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक देखें कि एक जो नूरानियत जो इस तरह से हमारी ज़िंदगी में कुरान के इन मतालब पर गौर करने से आ सकती है, उसका जो गहरा असर हो सकता है। इसके बाद अब ये एक मैं बहुत ही बगैर किसी सीक्वेंस के, क्योंकि यहाँ पे मैं तरतीब से नहीं बहुत उधर कर सका, एक और नुकता जिसको हम कुरान की इस जो अफकार हैं जो नूरानियत हमारे ज़िंदगी में लेकर आती हैं और उस फ़क्र को बयान करती हैं कि कुरानी फ़िक्र के लिहाज से और गैर कुरानी फ़िक्र के लिहाज से कहाँ पे वो फ़र्क ज़ाहिर होता है। इरशाद होता है सूरह सजदा के अंदर, अफमन कान मोमिनन कमन कान फासिकन ला यस्तवून। वो शख्स जो कि मोमिन, जो शख्स मोमिन है क्या वो फासिक के बराबर हो सकता है? एक एक आपको जो है वो सोचने का कुरान जो है कहता है कि सोचो जरा इस पर गौर करो, और एक सवाल करके जो है वो एक सवाल करता है क्या ऐसा हो सकता है कभी कि मोमिन और फासिक बराबर हो जाएं? अब ये कहाँ पे हमको हेल्प करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है कि हम देखें कि खुदा की बारगाह में जो जिसे कह सकते हैं इज्जत है वो मोमिनीन के लिए, जिस तरह से एक और आयत में इरशाद होता है कि इज्जत किसके लिए, खुदा के लिए और रसूल के लिए और मोमिनीन के लिए। तो वो जो असल इज्जत है, जो मकाम है खुदा की बारगाह में, उन लोगों के लिए है कि जो जितना ज्यादा अपने आप को इस बारगाह उबूदियत रुबूबियत से जो नज़दीक करते चले जाएँ, खुदा से नज़दीक करते चले जाएँ, उनके लिए इज्जत है। जो ईमान जितना लाएंगे उतना ही उनके लिए जो है इज्जत होगी। ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो शख्स जो कि मोमिन हो, वाकई मोमिन जो कि अपने ईमान के साथ साथ अमल सालेह अंजाम देता हो, ये शख्स कभी भी किसी फासिक के बराबर नहीं हो सकता, ना खुदा के नज़दीक जो है खुदा के बार निगाहों में जो है बराबर हो सकता है, ना अजर व सवाब के लिहाज से बराबर हो सकता है, ना उस इज्जत के लिहाज से बराबर हो सकता है जो खुदा उसको देगा। और ऐसा ही है, हम मुमकिन है बाज़ दफ़ा जो इंसान इस वहम व गुमान के अंदर आ जाए कि वो शख्स जो फासिकीन है उनको ज़्यादा जो इज्जत है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुदा इज्जत जो देता है मोमिन मोमिन के लिए जो है वो है, वो मकाम जो है मोमिन के लिए, इसीलिए मुमकिन है ज़ाहरी लिहाज से बाज़ दफ़ा इंसान जो है धोखा खा जाए कि ये मोमिन जो है बेचारा उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किलात के अंदर है, परेशानियों के अंदर है, फ़क्र के अंदर है, तमाम चीज़ों के अंदर, लेकिन वो जो इज्जत उसको हासिल है वो कभी भी एक फासिक को हासिल नहीं हो सकती। एक फ़र्ज़ करें कि एक शख्स है जो कि बहुत ज़्यादा मालदार है लेकिन है फासिक, बुरे काम अंजाम देने वाला है, तो मुमकिन है जब वो अपने इदारे के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर, अपने घर के बाहर निकले तो उसका जो जो मुलाजमीन है उसको सलाम करें, झुक झुक के जो है उसको सलाम किया जाए, उसको बड़ा एहतराम किया जाए। लेकिन ये सब कुछ क्या है, वो शख्स फासिक जो है उसका एहतराम कभी भी दिल से इंसान के अंदर, इसके कहते हैं इसके इंसानों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत जो है कभी भी ईजाद नहीं होगी। लेकिन वो शख्स जो कि मोमिन है वाकई, वो शायद बहुत ज्यादा लोग उसको उस तरह से जानते भी ना हो, इसके किस मकाम पर है, इसके पास मालो दौलत है किस लिहाज, लेकिन उसके लिए दिलों के अंदर मोहब्बत खुदा जो है वो करार देता है। ये तो एक जंब है ना कि इस फकत इस माना में बराबर नहीं, नहीं किसी भी लिहाज से जो ये लोग कभी भी बराबर हो नहीं सकते। इस लिहाज से भी बराबर नहीं हो सकते कि इंसान अगर ये सोचे कि वो शख्स जो कि जिसने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा खुदा से नजदीक होने की कोशिश की है, नए काम अंजाम दिए जिसने, और वो शख्स जिसने अपने फिस्क फुजूर के अंदर अपनी जिंदगी गुजार ली, और वो तवक्को करे कि मैं भी उन्हीं मकामात आला मकामात पहुंच जाऊं, तो ये भी यहाँ पे जो है शायद इंसान समझ सकता है कि तुम लोग बराबर नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान पूरी जिंदगी बेचारा मेहनत करता रहे, कोशिश करता रहे इखलास के साथ, और वो शख्स जो कि अपनी जिंदगी को लहव लाभ में गुजार दे और फिर उसको फजूर में गुजार दे और फिर तवक्को करे कि हम भी उन्हीं मकामात आलिया पे पहुंच जाए, ये लोग बराबर नहीं हो सकते। बस इससे अब देखें ये जो कुरानी फिक्र हमको बताई जा रही है, उस फिक्र के मुकाबले में कि जो हमारी अपनी जिंदगी के अंदर है, इसको जब इंसान कंपेयर करता है, अगर ये फिक्र आना शुरू हो जाए तो इसको कहते हैं नूरानियत। फिर इंसान का दिलो दिमाग और उसके जो है पूरा माशा जो है वो किस तरह नूरानी हो सकता है। इसी तरह से जो है एक और जगह इरशाद होता है सूरह तौबा की आयत नंबर 19 के अंदर, कि कहा गया जहाँ पे कहा गया कि फकत जो है वह अजाल तुम शिकायत अलहाज व इमारत अलमस्जिद अलहराम कमन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर, क्या तुमने फकत जो है वो लोग जो कि मस्जिद हराम के अंदर यानी खाने काबा के अंदर जिन लोगों का जिनका काम था और ये शरफ था कि वो लोगों को पानी पिलाया करते थे और साब जमजम से मसलन सैराब किया करते थे, और इस मस्जिद मस्जिद की जो है तामीर और उसके जो है मेंटेनेंस की और उसको आबाद रखने के जो काम है जिनकी जिम्मेदारी है, क्या ये लोग इसी तरह से हो सकते हैं कि जिस तरह से वो शख्स जो कि खुदा ईमान लाया खुदा पर और रोज़ क़यामत पर, वह जाहद फी सबीलिल्लाह ला यस्तवून इंदल्लाह, और फिर जो खुदा के राह में जहाद करता है, कोशिश करता है दुश्मनान खुदा के मुकाबले में वो जिम्मेदारी जो खुदा ने उसको दी है उसके उसके मुताबिक अमल करने की, यानी अपनी जिंदगी को मुश्किल बुलाकर जब जहाद होगा तो मुश्किल आएंगी, क्योंकि दुश्मन के मुकाबले में जब भी इंसान कोशिश करेगा तो दुश्मन की तरफ से भी रिस्पॉन्स आएगा, रिटेलिएशन होगी। तो ऐसा नहीं कि इंसान जो है बहुत आसानी से जिंदगी गुजार लेगा, नहीं, लेकिन ये शख्स जो कि खुदा पर ईमान लाता है, रसूल पर ईमान लाता है और आखिरत पर ईमान लाता है और फिर खुदा के रास्ते में जहाद करता है, यानी दुश्मनान खुदा के मुकाबले में खुदा के उस तरफ आके जो है उसके लिए काम करता है, अपनी जिंदगी में मेहनत करता है, ला यस्तवूना इंदल्लाह, खुदा के नजदीक कभी बराबर नहीं हो सकते। ये फकत जो है चंद आपके पास ओहदे आ जाएं दुनियावी, और चाहे वो हत्ता उसका ताल्लुक जो है दीनी, इसके अंदर दीनी रंग ही क्यों ना हो, मसलन खाना काबा के अंदर इसका शख्स का जो है मकाम है कि वो लोगों को हाजियों को जो है पानी पिलाने का जो ओहदा है जो उसको एक शरफ समझा जाता था और है भी बिलाकर एक शरफ, लेकिन आया ये उसके बराबर हो सकता है, वो एक मुजाहिद फी सबीलिल्लाह के बराबर हो सकता है जो खुदा अपनी जिंदगी जो है वक्फ कर दे खुदा के रास्ते में, कभी भी बराबर नहीं हो सकता। बस हम लोग जो है हमारे, लेकिन हमारी फिक्र क्या है कुरान फिक्र के मुखालिफ मुकाबले में, कि हमारे हम लोग देखते हैं कि जो जो लेबल्स लगे हुए हमारे नामों के आगे कि हाँ ये शख्स जो है फलान हुज्जतुल इस्लाम है, कोई आयतुल्ला है, कोई मसलन ये है, कोई मस्जिद का ट्रस्टी है, कोई जो है कोई चैरिटी का दायरा चला रहा है, कोई ये कर रहा है वो कर रहा है, तो ये हम समझते हैं कि हाँ ये वो लोग हैं कि जो खुदा के मुकर्रर बंदे हैं, जो नहीं, जबकि खुदा कहता है कि ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। वो लोग जो कि जिहाद करते हैं खुदा की राह में और इस तरह अपनी जिंदगी उनको वक्फ कर देते हैं, मुमकिन है तुम्हारी निगाहों में जिनकी कोई ज्यादा अहमियत ना हो, लेकिन वो मुजाहिद फी सबीलिल्लाह कहाँ, और वो शख्स जो कि इन तमाम उहदों पर फायज है जो मुमकिन है तुम्हारी निगाहों में बहुत बड़े हों। वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, और खुदा जो है कभी ज़ालिमीन की हिदायत नहीं करता, यानी अगर तुम ना समझना चाहो वाकईतों को तो फिर जबरदस्ती जो है इन चीज़ों को नहीं समझाया जा सकता, अगर समझना चाहोगे इन वाकईतों को अपनी आंखों को खोल के देखना चाहोगे तो ये चीज़ें तुम्हारे लिए खुदा वाज़ेह करके बता देता है। अपने जो मेयारात हैं, अपने जो भी खुदा से नज़दीकी के कुर्ब के मेयारात हैं खुदा वाज़ेह तौर पर इस तरह से बता देता है। इसी तरह से एक और जगह पर इरशाद होता है बयान हो गया, इसके बाद सूरह अनआम के अंदर एक जगह इरशाद होता है आयत नंबर 50 के अंदर, कुल्ला अकूल लकुम इन दी खजाइनुल्लाह ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون. کہ تم کہہ دو کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس جو ہے وہ بہت خدا کی طرف سے نہیں. جب اشکال ہوتا تھا انبیاء کے اوپر اور رسولوں کے اوپر کہ آپ جو ادعا کر رہے ہیں, دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں, تو آپ کے پاس وہ خزانے کہاں ہیں؟ یعنی وہ مال و دولت تو دکھائیں اپنا. کیوں؟ کیونکہ فکر غیر قرآنی کے اندر, وہ فکر جو کہ ظلمانی ہو, جس کے اندر نور نہ ہو, جو منور نہ ہو دل, وہ کیا چیز دیکھتی ہے؟ کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا وہی مقام رکھتا ہے, بس کہیں گے وہ کہاں ہیں, وہ خزانے کہاں ہیں. تو کہا کہ کہہ دو کہ اندی لا اقول لکم اندی خزائن اللہ, میں تو نہیں کہتا کہ میرے پاس جو ہے زمین کے جو ہے وہ خزانے موجود ہیں, ولا اعلم الغیب, اور نہ میں کوئی غیب کے علم کا دعویٰ کرتا ہوں, ولا اقول لکم انی ملک, اور نہ میں تم سے کہتا ہوں میں کوئی فرشتہ ہوں, نہ میں تم لوگوں کے جیسا انسان ہوں. لیکن فقط کیا ہے, ہاں فرق یہ کہ میں خدا کا بھیجا ہوا ہوں, مجھ پہ جو ہے وہی حاصل ہوتی ہے, وہ تمام کمال اس کو یہاں پہ ذکر نہیں کیا. کہا کہ ان اتبع الا ما یوحى, میرے فرق کیا ہے کہ میں خود اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو خدا نے مجھے کہا ہے. اب جو ہے خزانہ ہو خزانہ نہ ہو, باقی چیزیں موجود ہوں موجود نہ ہوں, میں ملک ہوں اس چیز سے اصل جو کرائیٹیریا ہو کیا ہے کہ انسان پیروی کرے, اتباع کرے اس چیز کی جو خدا نے اس کو کہا ہے. تو کہتے ہیں کہ ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو فقط اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے خدا نے وحی کی ہے. قل هل یستوی الاعمی والبصیر, تو کیا اعمی اور بصیر یعنی اندھا اور بینا انسان جو برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کیا یہاں پہ کمپیریزن کر کے کیا بتایا جا رہا ہے؟ وہ شخص جو کہ اطاعت کی زندگی گزارے, اتباع کرے خدا کی اور اس کو غرض نہ ہو باقی چیزوں سے, تو کیا یہ شخص وہ کون ہے جو کہ بینا ہے, جو صحیح دیکھ رہا ہے, جس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, اور وہ شخص جو باقی دوسرے ملاقات کی طرف جا رہا ہے, دوسرے کرائیٹیریا کو جو ہے فالو کرنا چاہتا ہے اور دیکھتا ہے کہ زندگی کے اندر پیسہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ چیزیں جو کہ انسان کو خدا سے نزدیک کر سکتی ہیں, یہ چیزیں ہیں جو انسان کے مقام کو بالا کر سکتی ہیں, تو کہا کہ نہیں, یہ شخص جو ہے در حقیقت ان تمام جو اس قسم کی فکر رکھ رہا ہے وہ در حقیقت نابینا ہے. ایسا ہے کہ اس نے کچھ سمجھا ہی نہیں, بالکل ایک نابینا انسان ہے. اب آپ کہیں کہ کسی عام زندگی کے اندر آپ کسی شخص کو نابینا کہیں, اندھا کہیں, تو کتنا اس کو برا لگے گا. لیکن قرآن ان آسانی سے جو ہے اپنی فکر بتا رہا ہے کہ میری فکر شخص فکر کے مطابق تو اس کی زندگی کے اندر یہ مختلف معیارات جب آئیں گے تو وہ اپنی اصلاح کرنا شروع کرے گا, اپنی جو اس کا جو سوچنے کا طریقہ کار ہے, اس کی جو منطق ہے وہ چینج ہونا شروع ہوگی, پھر اس کی منطق قرآنی بنے گی, اس کا سوچنے کا انداز وہ جائے گا جو کہ قرآن جو اس کو جو چاہتا. یہ جو چیز کہی تھی شروع میں جب قرآن کے اس تفسیر کے دلسات سے پہلے جو آداب تلاوت کے اندر چیز آئی تھی کہ اگر ایک شخص جو ہے ایک جوان جو ہے قرآن کی جو ہے وہ جوانی سے جو ہے جب تلاوت کرتا ہے اس کو, اس طرح سے جو ہے وہ قرآن اس کے کیا ہوتا ہے گوشت و پوست کے اندر, اس کے خون کے اندر مخلوط ہو جاتا ہے, یعنی پھر اس کی جان کا حصہ بن جاتا ہے. تو یہ کب ہوتا ہے کہ انسان اپنی اس قرآنی تعلیمات کو اس کے جان کا حصہ بننے کا کیا مطلب ہے کہ یہ قرآنی تعلیمات جو ہیں اس سے اس کا دل اور دماغ جو ہے منور ہو جاتا ہے, پھر اس طرح سے سوچنے لگتا ہے جیسے قرآن ہم کو چاہتا ہے کہ ہم سوچیں. لیکن اگر یہ ہمارے دل و دماغ کا حصہ نہ بنے, ہماری جان کا حصہ نہ بنے, تو یہ فکریں جو ہماری غلط فکریں افکار ہیں وہی رہتی ہیں, وہ اپنی جگہ پہ باقی رہتی ہیں, ہم قرآن کی تلاوت جو ہے کرتے چلے جاتے ہیں جب تک اس پہ ہم غور نہ کریں, فکر نہ کریں. اور ایک کب بہتر انداز ہو سکتا ہے؟ جب انسان جوانی ہی سے کام کرنا شروع کرے, کہ جب اس کی فطرت زیادہ پاک ہوتی ہے, اس کے اندر گناہ کے آثار کم ہوتے ہیں یا گناہ نہیں ہوتے, اس وقت جب یہ کام ہونا شروع ہوتا ہے تو ایک جس طرح سے خام جگہ پہ آپ جو ہے کچھ ڈرا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا جو نقش و نگار ہے یا وہ زیادہ بہتر طریقے سے وہاں پہ بنتا ہے. ایک ویسی کاغذ جو کہ گندا ہو چکا ہو تو اس پہ وہ چیز جو ہے اتنی زیادہ خوبصورت طریقے سے نہیں آتی, لیکن ایک چیز ہے جو فریش ایک کاغذ ہے اس کے اوپر جب آپ کوئی چیز ڈرا کرتے ہیں تو بہت اچھی طرح سے اس کا نقش و نگار جو اس میں سامنے آتا ہے. تو یہ بھی ایسے ہی ہے کہ انسان جو ہے جب جوانی کے اندر ایک کام کرتا ہے تو بلاخر اس کے آثار اپنے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ دوبارہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم مایوس ہو جائیں جو جوانی میں فرض کریں جو یہ کام نہ کر سکے, نہیں, خدا نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے, لیکن یہ انسان یہ بھی توقع نہ رکھے یعنی اپنے لیے, مگر خدا کا فضل کسی کے شامل حال ہو اس سے کوئی روک نہیں سکتا, لیکن بالآخر انسان بہت زیادہ غلط فہمیوں میں پھر جو انسان زندگی نہ گزارے کہ جو ہے ہم بالکل اسی طرح سے جو ہے بہت اعلیٰ. بالآخر جتنا انسان جسے کہتے ہیں گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہوگا, اب آپ زیادہ محنت کرے گا انسان تو زیادہ ہوگا, وہی بات آ جائے گی کیا ایک مومن اور فاسق برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو دو مومن بھی جو ہے برابر نہیں ہو سکتے, وہ ایک وہ مومن جس نے جو ہمیشہ سے اپنی پوری زندگی کو وقف کر دے اور زیادہ محنت کرے وہ اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا ہے, جو اپنی زندگی کے اندر کم سرمایہ گزاری کرے, کم جو ہے وہ اس کی طرف توجہ. لیکن بلا کر جو جتنی بھی انسان کی زندگی باقی بچ گئی اس میں इंसान तवज्जो करने की कोशिश करे। हो अच्छा, मैं यहाँ पे जो है वो अगर फर्ज करें कि यहीं पर गुफ्तगू को जो है वो रोका जाए और अब आप लोगों से कुछ फीडबैक लेने की कोशिश की जाए, तो क्या आप लोग मज़ीद इसके कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं? यानी
अस्सलाम वालेकुम मेहंदी।
कुछ कह रहे हैं?
हाँ, आवाज़ आ रही है मेहंदी?
हाँ बोलो।
हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा था, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अभी आपने जैसे कहा कि कुरान नूर है, इस बारे में जो है वो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की भी बात कर रहे थे, तो इसके लिहाज से मैं ये कह रहा था कि कुरान में ही एक आयत है कि अल्लाह नूर समावाती वल-अर्ज़। जब हम ये बात समझते हैं कि यानी जब हम इस आयत को पढ़ते हैं और उसके साथ साथ फिर बाकी चीज़ों को देखते हैं कि अल्लाह ने एक जगह पे कुरान को नूर कहा है, तो वो इसलिए कि अल्लाह का कलाम है तो लिहाजा वो भी नूर है। इसी तरह से अम्बिया को नूर कहा है, तो जो जो चीज़ें अल्लाह की तरफ हमें पहुंचाती हैं वो सब की अब यानी नूर की तरफ हमें पहुंचाती है। इतनी सी है कि कौन जो है वो आयत लेने के लिए, यानी प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम लोग कुरान को क्या हर वक्त अपने साथ रखते हैं कि हमारे हर प्रॉब्लम का हल हम कुरान से ढूंढ रहे, हम कुरान को यूज करते हैं अपनी जिंदगी में या नहीं करते? यानी एक तबर्रुकन या सवाब के लिए तो एक अलग चीज है, लेकिन एज ए मैनुअल ऑफ आवर लाइफ या कोड ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं, उस तरह से तो यूज नहीं होता। इसलिए क्योंकि हम तरफ है कुरान, या वो एक अपने लिए रोजाना की जिंदगी के अंदर कोई ना कोई हिदायत ले रहे हो प्रॉब्लम्स के लिए, और डेफिनेटली वो डायरेक्शंस जो खुदा देना चाहता है वो में ईमान को सचमुच में एक हिदायत की किताब के तौर पे लें कि जो हमें खुदा तक यानी कयामत के दिन तक जो है वो पहुंचाता है अल्लाह के रास्ते पे रखते हुए, तो हम उससे इस्तेफादा कर सकते हैं, वरना तो हर घर में ही है ये। और यानी जिसे नूर का जो वर्ड आया है जो कि खुदा के लिए भी यूज हुआ है, तो उस तरह से तो हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे अदरवाइज।
सही है। हाँ, और अगर हम नूर के तौर पर उसको देखना चाहें तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, यही बयान करने की कोशिश हो रही थी कि किस तरह से ये वाकई इस निगाह से अगर कुरान को देखा जाए तो किस तरह से हमारे अपनी नफ्स को भी, हमारी अपनी जानों को भी मुनव्वर करता है, और जिस माश कुरान फिर नाफिज हो यानी आ जाता है इस तरह से, वो फिर माशा पूरा जो माशा है वो नूरानी हो जाता है। तो इस हवाले से कोशिश थी कि कुछ आयात की जो हम एग्जाम्पल्स के तौर पे बयान किया जाए ताकि हम देखें किस तरह से हमारे माशरा भी उसकी वजह से जो है वो नूरानी होता है। मसलन एक और जगह पे खान में एक और साहब कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ईमान के हवाले से सबसे वाज मिसाल हमारे रिलीजियस सोशल वॉलंटियर्स हैं। हम जितना भी रिलीजियस काम कर लें, हमारी सोसाइटी को और हमारे हमें उस वक्त तक फ़ायदा नहीं होगा जब तक हम खुद बा ईमान ना हों। जी सही है कि असल वही है कि इंसान पहले मरहले के अंदर इंसान खुद जो है वो बा ईमान होता है। इत्तेफाक से यहाँ पे इसके हवाले से भी एक और आयत मैंने जरा कि तो मैं वो भी मैं कुछ फर्क ही नहीं कुरान से हिदायत लेने वाला कासिम सुलेमान था, कुरान से रुगर्दानी करने वाले दाइश की सूरत में नजर आते हैं। जी बिल्कुल, ये सारी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं कि किस तरह से वो ये चीज़ें जो है वो ट्रांसलेट होती हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर। फ़कत ये जो है कोई थ्योरेटिकल एक किताब नहीं है जिसका हमारी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक जो है, इंसान को कहाँ से पहुँचा सकता है, जिसमानत तो भी पहुँचा सकता है, और अगर इसके इंसान इससे जो है वो रुगर्दानी करे तो वो बिल्कुल ज़मीन के अंदर जिसकी गहराइयों के अंदर जो है वो गिर भी सकता है। तो बिल्कुल सही है कि मेरा जो कहने का मकसद वो ज़्यादा ये था कि आया आप लोग भी कुछ मज़ीद इसके अंदर कुरान के हवाले से कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मसला नहीं है अगर अभी बाद में भी हो, लेकिन अगर किसी जहन में आए कि हाँ देखें यहाँ पे भी इन आयात के ज़रिए से भी हमारी ज़िंदगी जो है, अगर हम इस तरह से सोचेंगे तो हमारी ज़िंदगी जो है चेंज हो सकती है, अगर हम जो है वो अपनी दूसरी फिक्र के साथ सोचेंगे तो शायद जो है वो नतीजे ना निकले। तो इसकी इसी तरह से जो है कुछ और मिसालें मैं आयात के ज़रिए से जो है बयान करता हूँ कि तो एक सूरह रात के अंदर जो इरशाद होता है कि कुल, आयत नंबर 16 के अंदर, कुल मन रब समावात वल अर्ज, देखो कहो कि पूछो कि कौन जो है वो बिलाखिर जमीन और आसमान का रब है, कुल अल्लाह, तो वो कहेंगे कि और कह दो कि खुदा ही जो। कुल अफतखस्तुम मिन दूनही औलिया ला यमलिकून लिअन्फुसिहिम नफअन वला दरन, फिर उनसे सवाल किया जाए कि तुम क्यों आखिर उन लोगों को अपना औलिया बनाते हो कि जो अपने लिए किसी नफ और किसी जरर के जो है वो नफा नुकसान के जो मालिक नहीं है, खुद ये लोग मोहताज हैं, उनको अपना वली क्यों बनाते हो, उनकी जो है सरपरस्ती को क्यों कबूल। कुल हल यस्तक्स, उस शख्स के माने हो सकता है कि जो बीना हो, यानी वो शख्स जो कि इस हकीकत को समझ जाए कि ये जितने भी इंसान हैं ये मेरी तरह के इंसान हैं और इन ये इन हकीकत यानी हक ये है कि खुदा को सजावार ये है कि खुदा को इंसान अपना जो है वली बनाए, या वो लोग जिनको खुदा ने वली बनाने को कहा है, ना कि वो लोग जो कि इसी की तरह के इंसान है, कोई उनके बैग के ऊपर जो है खुदाई ताकत नहीं है, ये तो तुम लोगों की तरह के इंसान। कैसे जो है नाई की वजह से जो है वो शाइस्तगी रखते हैं, और फिर फौरन कहा कि क्या एक शख्स जो कि नाबीना है वो बराबर हो सकता है उस शख्स के जो देख रहा है। बस वो शख्स जो ये वो जो कुफार हैं खुदा के नज़दीक सब के सब क्या हैं, बहुत आसानी से हम कह सकते हैं कि कुरान की निगाह में ये सब जो है वो नाबीना है, असल उस हकीकत को ही नहीं देख पा रहे कि जो हकीकत को देखा जाना चाहिए, और अगर इंसान देख ले तो उसके नतीजे में जैसे भाई ने भी मिसाल दी कि उसका एक कासिम सुलेमानी बन सकता है और एक शख्स जो है वो कहीं और जा सकता है। हल तस्तवे जुलमात व नूर, इसी तरह से जुलमत और नूर क्या कभी मुसावी हो सकते हैं, कैसे हो सकता है, वो कितनी तारीकी है यहाँ पे इंसान कुछ देख ही नहीं पा रहा, ना अपनी हकीकत को समझ पा रहा है, ना इस जहान की हकीकत को समझ पा रहा है, तो ना इनके आपस के रिलेशंस को समझ पा रहा है। जब इंसान कुछ समझ ही नहीं पा रहा, उसको कुछ पता ही नहीं है, तो वो कैसे दावा कर रहा है कि मैं जो है वो नूर के अंदर हूँ और मुझे सब नजर आ रहा है, नहीं ये तो जुलमतों के अंदर है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर सोच रहा है, फिर इसका ख्वाब और ख्याल है कि इसको जो नजर आता है, जबकि ये एक ऐसा इंसान है कि जो ना फकत अंधा है बल्कि तारीकी के अंदर है, यानी इस तारीकी के अंदर अगर कोई शख्स जो है नाबीना भी हो तो उसकी जो है वो कहाँ पे हो, उसको कुछ भी जो है उसके पास किसी भी हकीकत से वो आगाह नहीं है, बस ना जुल्मत और नूर बराबर हो सकते हैं, ना एक शख्स जो कि बसीर है वो उस शख्स के मुसावी हो सकता है कि जो नाबीना हो। अमजा शुरका, तो फिर दोबारा से बात आती है कि शिर्क की एक मिसाल लेके आते हैं, एक मजदाक के तौर पर बयान होता है कि शिर्क फिर किस चीज़ का मजदाक है, उसी जहा उसी जुल्मत का और उसी तारीकी का एक वाज़ह मिसाल है कि इंसान जो खुदा के मुकाबले में शिर्क करे। अच्छा शिर्क जो है वो एक तो शिर्क इस्तिलाही है कि हम कहें कि खुदा को कोई शख्स जो है वो वाहिद ना माने, और उसके मुकाबले में मसलन फ़र्ज़ करें कि बुत परस्ती की तरफ जो एक वाज़ह उसकी मिसाल है मजदाक है कि उस तरफ चले, या इसका जो तवज्जो है तो और खुदा को जो है फरामोश किया हुआ है, यानी अगर जो है वो बिल्कुल इसके इसके नज़र में क्या है पैरेलल चीज़ें हैं कि खुदा भी जो है वो मेरी हेल्प कर सकता है और ये डॉक्टर भी मेरी हेल्प कर सकता है, ये मालो दौलत भी मेरी हेल्प कर सकता है, ये चीज़ें दवाएं ये सब भी मेरी हेल्प कर सकती है, ये जैसे ही कॉन्सेप्ट आएगा कि ये भी हो सकता है ये दोनों एक साथ हैं एक शिर्क है, तो बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बहुत कम ऐसा नहीं, बहुत कितनी जगह पे हम लोग ये काम कर रहे होते हैं कितनी, लेकिन इसको कहा जाता है शिरके खफी है, इंसान बहुत ज़्यादा उसके तरफ जो है उसका मुतवज्जे नहीं होता, बल्कि उसके दिल के अंदर ही चीज़ होती है, और अगर अपनी ज़बान पे चूंकि उसको नहीं लेके आता इसलिए उसको शिरक जली नहीं कहते, वाज़े नहीं होता, छुपा हुआ शिरक होता है, लेकिन इंसान इसके अंदर मुबतला होता है हमारी ज़िंदगियों के अंदर है। तो इस चीज़ पे जो है वो गौर करने की ज़रूरत है कि इंसान फकत इस आयत के अंदर जो कहा गया कि शिरक को एक मज़दाक करार दिया गया कि ये लोग जो है दरहकीकत नाबीना है, अगर हमारी ज़िंदगी भी ऐसी है कि शिरक से आलूदा है तो हम भी जो है वो दरहकीकत क्या कर रहे हैं, एक नाबीनाई और एक जुल्मानी ज़िंदगी के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें भी जो है चीज़ें नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब यानी हम असल हकीकत को नहीं देख पा रहे, असल इसबाब को नहीं देख पा रहे, असल कुदरत को नहीं देख पा रहे, और फकत हमारी नज़र जो है वो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर है, हम समझ रहे हैं ये असल चीज़ है, जबकि तो वो खुद कुछ भी नहीं है, वो तो एक बेजान सी चीज़ है कि जब तक तो उसके ज़रिए खुदा ना चाहे वो इंसान उसको जो फ़ायदा पहुँचना चाहिए वो कभी भी चाहे वो शिफा के लिहाज से या किसी और चीज़ के लिहाज से वो नहीं पहुँच सकता। इल्म इसी तरह से मैं अगर समझूँ कि मुझे इल्म जो है वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन की वजह से मैं आलिम हो जाऊँगा या मैं किसी बहुत बड़े स्कॉलर के पास जाने के बाद उससे जो है मुझे इल्म मिल जाएगा या मैं किस किताब को पढ़ने से आलिम हो जाऊंगा, सब गलत फहमी, इंसान इन चीज़ों से आलिम नहीं बनता, इल्म जो है वो शिफा हासिल करने का वो टूल भी ज़रूरी है कि उसके टूल के बगैर इंसान उन तमाम चीज़ों को हासिल करे, तो शिफा के लिए भी कहा गया कि इंसान डॉक्टर के पास जाए, दवाओं का इस्तेमाल करे, लेकिन इसको जहन में रखते हुए कि ये शिफा देने वाले नहीं है, शिफा देने वाला खुदा है। इसी तरह से इल्म हासिल करने के लिए भी हम ज़ाहरी असबाब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये चीज़ इंसान के जहन में रहे कि इल्म यहाँ से नहीं मिलता, इल्म वो चीज़ है कि जो खुदा की इज्जत से इंसान को मिलता है। बस इस तमाम चीज़ों पर गौर करने से इंसान अपनी ज़िंदगी से शिर्क को निकालेगा तो फिर हकीकी मानों में फिर वो बीना हो सकता है, हकीकी मानों में देखने वाला बन सकता है। इसी तरह से एक जगह इशारा है कुल्ला यस्तविल खबीस व तैयब, खबीस और तैयब बराबर नहीं हो सकते। देखिए कि यानी कितनी ज्यादा कुरान जैसे कहा था कि एक ऐसी आम फहम जो है किताब, इसके अंदर कोई चीज ऐसी बयान नहीं की जो आपकी किसी को समझ में ना आए, भैया तुम समझ में नहीं आ रहा कुरान क्या कह रहे, नहीं, वाज़ सी बात है, क्या कोई खबीस चीज़ यानी कोई वही जिसे हम कहते हैं खबीस गंदी चीज़, कोई नापाक चीज़ जो है वो बराबर हो सकती है, तैयब चीज़ के पाक और पाकीज़ा चीज़ है, अच्छी चीज़ है, क्या अच्छा या बुराई जो है वो बराबर हो सकते हैं, अच्छी और बुरी चीज़ एक बराबर हो सकते, नहीं हो सकते, मगर तुमको समझ में नहीं आती बात, मगर इंसानों को ये क्या ये चीज़ समझना मुश्किल काम है, नहीं, देखिए किस तरह से कुरान जो है हिदायत करता है इंसानी की ज़मीरों को जो है वो झिंझोड़ने की कोशिश करता है, कह दो कि ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते, वलो जब कसरतुल खबीस है, गरचे मुमकिन है कसरत खबीस के साथ हो, यानी कसरत जो है बुराई के साथ हो, लेकिन ये तुम्हें धोखे में ना डाल दे, ये ना समझना कि चूंकि बुराई के साथ कसरत पाई जाती है, अक्सर लोग जो है इस बुराइयों के अंदर हैं, अक्सर लोग इन चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं, बस ये हतमन ये हक इस नहीं, हक और बातिल होने का मेयार जो है वो कसरत नहीं है, बल्कि नहीं, जो चीज़ अच्छी है अगर वो कम भी होगी तो उसकी अच्छाई अपनी जगह बाकी रहेगी, जो चीज़ बुरी है अगर वो कसीर भी हो जाए, ज्यादा भी हो जाए, तब भी उसकी अपनी बुराई बाकी रहेगी, हम ये नहीं कह सकते क्योंकि बुराई अब जो फैल गई माशरे के अंदर हर आदमी उसको अंजाम दे रहा है अभी बुराई बुराई नहीं, वो बुराई अपनी जगह पे, वो खबीस अपनी जगह पे, वो उसकी खबासत, उसकी बुराई, उसकी पलीदी, उसकी नजासत अपनी जगह पर रहेगी, वो कभी खत्म नहीं होगी, ये चीज़ें कभी भी बराबर नहीं हो सकती, गरचे तुम्हारे मुलाकात चेंज हो जाए, गरचे तुम्हारे वो नाबीनाई वाले जो क्राइटेरिया है जिससे तुम जुल्मत में ये चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो, वहां पर चीज़ें तुमको उल्टी नजर आएंगी, वहां पर चीज़ें तुमको सही समझ में नहीं आएंगी, लेकिन कुरानी फिक्र के हिसाब से जब तुम्हारे दिल और तुम्हारी आंखें और तुम्हारे कल्ब और तुम्हारा वजूद जब मुनव्वर हो जाएगा, तब जब तुम चीज़ों को सही देखने लगोगे तो कहो कितनी हद तक वो चीज़ जो कि छोटी क्यों ना हो लेकिन अगर तैयब है तो वो कहाँ, और वो बड़ी बड़ी चीज़ें कि जिनके साथ ज़ाहिरी दुनिया की शान शौकत मौजूद हो वो कहाँ, बस तो इंसान कभी भी उस तरफ हरकत नहीं करेगा। इसी तरह से एक और जगह शायद होता है, कहते हैं कि सूरह निहल के अंदर आयत नंबर 76 वज़रब अल्लाह मसलन रजुलैन अहदुहुमा अबकम ला यक़दिरु अला शय वा हुवा कल्लुन अला मौलाहु अय्यमा युवज्जिहु ला याति बिखैरिन मुस्तकीम। फिर एक और जगह मिसाल देता है दो लोगों की, एक वो है कि जो अबकम है, अबकम यानी जो मादर सकता हो ना जो है वो कह सकता हो ना बोल सकता है ना सुन सकता है, इसके पास जो अहम तरीन जो चीज़ है, अहम तरीन जो वसीला था इंसान का इल्म हासिल करने का, वो उसके पास नहीं है, क्योंकि इंसान जो है जब तक सुनेगा नहीं किसी चीज़ को और ना जो है वो बोल सकेगा, तो कम्युनिकेट जब नहीं कर सकेगा, उसके पास अहम तरीन वसीला जो कि इल्म हासिल करने का है वो उसके पास नहीं है, तो उसको मिसाल दिया रही है एक ऐसे शख्स की जो कि अबकम ला यकदिर वाला, असल किसी काम करने पर कादिर नहीं, कुछ पता ही नहीं ना उसको जो है समझ में आती चीज़ है ना वो कुछ कर सकता है, तो आया, वो क्या है, वह कल नला मौला, अब उसके फर्ज का एक ऐसा गुलाम है, एक ऐसा अब्द है और जो इस किस्म का है, जो अबकम है, तो अपने मौला के लिए क्या होगा, एक बवाल होगा, देखिए सारे काम बजाय इसके कि अब अपने मौला के काम आए, यहाँ पे सारा क्या हो जाएगा, इस मौला को जो है उसका देखभाल करनी पड़ेगी, उसका जो संभालना पड़ेगा वो किसी काम का नहीं है। ऐनमा युवज्जहु ला याति बिखैर, एक ऐसा शख्स जिसको जहां पर भी भेजा जाए कोई खैर की उम्मीद उससे नहीं की जा सकती, वो अबकम है, उसको क्या पता, उसको चीजें समझ में नहीं आती, उसके आप किस खैर की उम्मीद कर सकते हैं, एक ऐसा शख्स की मिसाल दी जा रही है, इसको तो अपने जहन में रखे रहो, हल यस्तवी हुवा वा मन यअमुरु बिल अदल, आया ये शख्स उस शख्स की तरह हो सकता है कि जो अमर की अमर करता है, हिदायत करता है अदल की जानब, अदालत की जानब, यानी क्या मतलब, आप अदालत की जानब, यहाँ पे कुछ चीजों को जो है वो हस कर दिया गया, बयान नहीं किया गया, यानी वो शख्स जो कि अमर करता है अदालत की तरफ, पहले मरहले में खुद क्या होगा, उस अदालत को समझा होगा, यानी एक समझने वाला इंसान, वो शख्स क्या था, अबकम था, उसको कुछ समझ में नहीं आता था, वो हक से जो है वो महरूम था, दूर था, बस वो शख्स जो कि अदालत की तरफ जो है लोगों की रहनुमाई करता है, पहले मरहले के अंदर खुद क्या, उसने अपने आप को आदिल बनाया होगा, खुद अपने लिए जो है मेयार जिंदगी के अंदर अदल का जो है मानने वाला है, आदिल है, और फिर जो है अपनी जात के ऊपर, अपनी वजूद के अंदर जब उस अदालत को नाफिज कर लेता है, खुद अपने जात के अंदर वो आदिल हो जाता है, तब जो है वो लोगों को भी चाहता है कि पूरा माशरा भी क्या बन जाए, आदिल माशरा बन जाए, अदालत इसके अंदर आ जाए, हर चीज के अंदर जो है अदल, तो ये शख्स क्या बराबर हो सकता है उसके, वो नहीं हो सकता। बस यहाँ पर भी दोबारा से वही कि तुम लोग क्यों इस इन, इन अपने अफकार को जो है मुनव्वर नहीं करते, क्यों जो है इन गुमराहियों के अंदर, ये एक शख्स कहाँ, वो शख्स कहाँ, वो शख्स जो कि इस तरह से अपने आप को भी, जिसके कह सकते हैं तज़किया नफ्स जिसने किया हो, जिसके अंदर तमाम चीजें उसकी सही जगह पर हो, हर चीज को अपनी जगह पर रखता हो, खुदा को खुदा के मकाम पर, अपने आप को खुद उसकी अपनी मार्फत रखता हो कि मैं कौन हूँ, मेरा मकाम क्या है, इन तमाम चीजों को सही जगह पर रखता हो, इस दुनिया को सही तरह से समझता हो कि उसका मकाम क्या है, अदालत यही, अदालत क्या होती है कि इंसान हर चीज को उसके सही जगह पर रखे, ये भी दुनिया को उसकी वही मकाम देता है जो उसका है, आखिरत को वही मकाम देता है जो उसका है, खुदा को वही मकाम देता है जो उसका है, नहीं उसी तरह से समझता है जो हक है समझने का, और अपने आप को भी इस तरह से, तो जब तमाम चीजें उसकी अपनी जगह पर होंगी तो उसकी जिंदगी उस सिरात मुस्तकीम पर जो है वो चलेगी, ये है सिरात मुस्तकीम के ऊपर, और फिर जब खुद इंसान इन तमाम चीजों को अपने अंदर देखेगा, चाहेगा कि पूरा माशरा भी जो है, बाकी लोग भी, बाकी इंसानियत भी इससे बहरामंद हो, ये शख्स कैसे उन लोगों के साथ हो सकता है, बराबर हो सकता है कि जिसने इन हकायक को ना समझो, बस दोबारा से जो है वो कुरान हमको बताता है कि वैल्यू जो मेरे नजदीक जो अहमियत है इन चीजों की वैल्यू, अगर हम इस चीज को अप्लाई करने शुरू करें तो देखें किस तरह से हम खुद भी मुनव्वर होंगे और माशरा भी जो है मुनव्वर हो जाएगा, इसी तरह से अल्लाह मिसालें जो है वो हैं, आप जब भी आप समझे कि टाइम ज्यादा हो रहा है तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, अच्छा एक और शायद कोई मैसेज है, कुरान से दूर अपने माल को अपना समझता है लेकिन कुरान पर अमल करने वाला माल को भी, हाँ ये भी एक इतफाक से एक चीज़ जो मेरे जहन में आई थी, उसको बयान करना था कि इंसान जो है ये इनफाक के हवाले से जो बात बहुत ज़्यादा कुरान के अंदर बयान होती है, इतफाक से अगर उसी आयत को यहाँ पे बयान कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, कि मसलन जो है वो कौन सी आयत है कि जिसमें कहा गया कि लैसल बिर, बिर ये नहीं है कि सूरह बकरा की आयत नंबर 177, लैसल बिर, लैसल बिर, बिर यानी नेकी अच्छाई, ये नहीं कि अंतवल्लु वजूहकुम केवल अलमशरिक़ केवल मगरिब, तुम जो है फकत खुदा मशरिक़ व मगरिब की जानब जो है अपना चेहरा करके जो है वो मसलन फर्ज करें इबादत के जाहिरी को अंजाम देने में लग जाओ, वलाकिन्नल बिर क्या है, बिर वो है कि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताब व नबीयीन, यानी अपने अकायद को पहले मेरे मरण में दुरुस्त करे, उसके सही अकायद, उसकी सही फिक्र जो है उसकी सही हो, और फिर क्या है साथ साथ फकत अकीदा नहीं बल्कि अमल के अंदर, अमल के अंदर सबसे पहली चीज़ जो बयान की, वो आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व इब्न सबील वल वसाइरीन व फिर रिकाब व इकाम, फिर जो इन्फाक की बात हुई सबसे पहले कि इन तमाम मसादिक को जिसको बयान किया कि जहाँ पे यतीमों मिसकीनों जो रास्ते में जो दरमानदा अफराद हैं या वो लोग जो के गुलामों का आज़ाद कराने के लिए तमाम जो नेक काम है उसके लिए जो है वो इन्फाक करता हो, खुदा की राह में खर्च करता हो, और फिर जो है काम नमाज जो है कायम करता हो, वह आत ज़कात का देता हो, वलमूफून अब अहदीन अपने वादों पर और अहद पर जो है पाबंद हो, उसको जो है वफा करता हो, जब वो अहद करता हो तो उसकी पाबंदी करता हो, वह साबरीन फिलबासाय वर्रा, और वो नेकी हकीकी ये है कि इंसान सख्तियों के अंदर मुश्किल के अंदर सब जो है सब्र से काम ले, देखें जब सख्तियों का ज़माना ना हो, जब मुश्किल का ज़माना ना हो, तो उस वक्त तो ये कहना कि हम जो है रास्ते पे जो है डटे हुए हैं और सिराते मुस्तकीम पे, तो कोई वो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं। असल वक्त वही आता है, इस्तिकामत का मौका ही हुआ है, यानी सब का बात ही उस वक्त आती है जब मुश्किल में इंसान पड़ता है, उस वक्त जो है वो इस्तिकामत दिखाना जो है असल वो मरहला होता है। असल हुनर वो है कि इंसान उस वक्त जो है वो मुश्किल के अंदर उसके पैर जो है वो ना डगमगाए, उस रास्ते पर चलता रहे। तो ये साबरी नफिल बासा वर्रा वहीन अलबास उलाय कल्लदीन सदकू ओलाय कहमुल मुत्तकून। दरअकीकत सादिक अफराद भी यही है, सिद्क उन्हीं को हम कह सकते हैं कि ये सही मानों में सादिक हैं, और सही मानों में मुत्तकी भी यही लोग हैं, हकीकी मुत्तकी भी यही हैं। तो जिस तरह से हम बरादर ने जिक्र किया कि माल का खर्च करना, कुरान एक और जगह इस तरह से बयान करता है, या बाज़ अहादीस में भी है कि माल जो है मालुल्लाह, ये माल तुम्हारा अपना माल नहीं, किसने का तुम्हारा अपना माल है। या कितनी कुरान के अंदर आयत है जहाँ पे इन्फाक का जिक्र आता है, तो साथ साथ बयान होता है कि उस माल को जो हमने तुमको अता किया, मिम्मा रज़क़ना हूँ, उस माल से दे दो जो हमने खुद दिया है, ये तुम्हारा माल थोड़ी खुदा जो है वो लेना चाह रहा है। खुदा ने कब कहा कि अपने माल से दो, उसी माल से जो मैंने तुमको दिया, यानी जिसको मैंने अमानत तुम्हारे पास रखवाई है, उसी माल को मैं तुमसे तलब कर रहा हूँ, उसको जो है मैं खुदा के राह में खर्च करूँ। और उसका फ़ायदा भी इतफाक से कहाँ पलटता है, इंसान जब अपने माशरे के अंदर मुख्तलिफ इन मसादी को जो खर्च करता है, ये माशरा जो है फ़क्र से निजात पैदा करता है। ये माशरा जिस माशरे में फ़क्र नहीं होता, तो उसके अंदर बहुत सारी जो पॉजिटिव जो चीज़ें होती हैं रूहानी लिहाज से, मानवी लिहाज से, ये भी जो है आहिस्ता आहिस्ता इल्मी लिहाज से, जब ये माशरा ग्रो करने लगता है, वो माशरे इसके अंदर फ़क्र ना हो, फिर उसके अंदर लोग जो है तवज्जो देते हैं इल्म के ऊपर, तकवा के ऊपर, मानवियात के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, इन तमाम। लेकिन जिसके अंदर माशरा फ़क्र के अंदर हो, वहाँ पे जरायम पे बढ़ते चले जाते हैं, वहाँ पे जो है वो माशा जो है पस्तियों, बहुत सारे ऐसे काम जो कि पस्त काम है, इंसान उसमें वो माशा मुबतला होता चला जाता है। तो इसका फायदा भी तुमको ही होगा, बुलाकर खुदा को तो कोई ऐसा नहीं है कि खुदा के जेब में पैसा आ जाएगा, नहीं, वही माल जो हमने खुद तुमको दिया उसी में से दो, ताकि तुम्हारा भी अपनी ग्रोथ हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, और तुम जो है ताल्लुकात मादी से, ताल्लुकात दुनियावी से निकलो, इन जंजीरों से आज़ाद होकर निकलो, तुम भी एक इंसान आज़ाद बन सको, और इंसान बन सको, और ये माशा भी जो है इस तरह से तरक्की कर सको। देखें कितने ज़्यादा जो है वो फ़वाद हैं। लेकिन कब होगा, जब जब माल को मैं अपना जाती वो चीज़ ना समझूँ कि ये तो मेरा है और मेरा इस पर हक नहीं। अगर इंसान माल को ये समझे कि फ़कत अमानत है, तो फिर इतनी आसानी से जो इससे उसको खुदा की राह में खर्च कर सकते हैं। तो ये वो चंद नमूने हैं, बहुत सारे और कुछ चीज़ें थी, मसलन दोस्ती का, क्या हमारे पास टाइम है इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, या अगर आप थक गए हैं तो मसला नहीं। सही, इसी तरह से आप दोस्ती के मेयार पर आ जाएं, दोस्ती जो है वो खुदा कहता है कि दोस्त और दुश्मन का मेयार क्या है, दोस्त और दुश्मन का मेयार भी जो है खुदा महवरी है, कि वो लोग जो के खुदा के से दोस्त को अपना दोस्त रख, उसको अपना वली मानता हूँ, उससे दोस्ती करना चाहता हूँ, तुम उन्हीं से दोस्ती करो, जो खुदा के दुश्मन उनसे दोस्ती ना करो। यानी जो दोस्ती का मेयार है, ये सब चीज़ें जो है वो क्या है, इन खुदा की कुरान की नज़र में, कुरानी फिक्र के लिहाज से खुदा महवर है। ला तजिदु कौमन यूमिनून बिल्लाह वल यौमिल आखिर, तुम नहीं पाओगे किसी ऐसी कौम को कि जो खुदा पर ईमान लाए और आखिरत पर ईमान लाए, और फिर वो क्या करे, युवादू नमन हाद अल्लाह, और फिर साथ साथ उन लोगों से मोहब्बत भी करे जो खुदा से दुश्मनी करते हैं। ये नहीं हो सकता कि एक ऐसी कौम हो जो कहे कि हम बड़े मोमिन हैं, हम तो मुसलमान हैं, मोमिन हैं, लेकिन उन लोगों से दोस्ती करे जो कि खुदा के दुश्मन है। और जब उसको हम कितना वाजह तौर पर इस वक्त अपने पूरी दुनिया के अंदर देख सकते हैं, हमारे अपने मुल्क से लेकर और पूरी उमूमी तौर पर जो मत मुस्लिम जिसे कहा जाता है, कितना वाजह तौर पर हम देख सकते हैं कि एक तरफ इद्दया करते हैं कि हम मुसलमान हैं, और दूसरी तरफ सबसे हम जो है वो इस इफ्तिखार पर और इस जो है वो उस कहते हैं कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ऑनर की बात है और प्राइड की बात है कि हम क्या कहते हैं कि हमारे तो उनसे बड़े ताल्लुकात हैं, जिसको जो है वो शैतान अकबर से जो है, और जो है वो बदतरीन जो उस वक्त जो है वो जिसे कहते हैं इस्तकबार का जो हेड है, इंपीरियल पावर है, बहुत तो आसानी से कहते हैं कि हमारे तो उनसे बेहतरीन ताल्लुकात हैं, और उनसे हम बेहतरीन ताल्लुकात रखना चाहते हैं, उनसे दोस्ती रखना चाहते हैं, और इसी पर जो है फख्र भी करते हैं। तो कैसे हो सकता है, खुदा कहता है कि तुम कोई कभी नहीं हो सकता एक ऐसी कौम खुदा पर ईमान लाए और आखरत पर ईमान लाए, यानी वाकन अगर वो ईमान लाए तो ये नहीं हो सकता फिर युआद्दून मन हद अल्लाह व रसूलहू, और ये असल मंतिक के खिलाफ है, खिलाफ है मंतिक, और बिल्कुल जो हम ये बात करते हैं गैर मंतिक की बात, जिससे मैं मोहब्बत कर रहा हूँ उसके दुश्मन से कैसे मैं मोहब्बत कर सकता हूँ, या तो फिर मुझे इससे मोहब्बत नहीं है, फिर एक से एक चीज़ हो सकती है, दोनों चीज़ें जमा नहीं हो सकती। वलोकान हत्ता, अगर वो लोग जो कि खुदा से दुश्मनी करने वाले हैं, हत्ता अगर वो तुम्हारे अपने आबा और अजदाद क्यों ना हो, या तुम्हारे अपनी औलाद क्यों ना हो, लेकिन नहीं हो सकता कि अगर वो तुम्हारी औलाद जो है या तुम्हारे आबा अजदाद जो है अगर खुदा से दुश्मनी करने वाले हैं, तो कैसे हो सकता है कि तुम जो है खुदा के मुकाबले में अपनी औलाद को तरजीह दो, खुदा के मुकाबले में अपने आबा अजदाद को जो है तरजीह दो, नहीं हो सकता, उनसे बुलाकर इनमें से किसी एक को तुम्हें अख्तियार करना होगा, दोनों जम नहीं हो सकते, या तुम्हारे अपने भाई हों और इखवान हों, या अशीरत हों, या तुम्हारे अपने खानदान वाले हों, उलाय का कतब फी कुलूबहिम अल ईमान, अगर इस तरह से हो जाए ये खुदा की मोहब्बत के आगे फिर इन तमाम चीजों को जो है कुर्बान करने को तैयार हूँ। इनके साथ कब तक इनकी दोस्ती है कि जब तक ये खुदा के दोस्त हों, ये घर वाले, ये जो अपना औलाद हो, क्या नाम है, वालदैन हो, इस सब लोग जब तक इस रास्ते के अंदर हों, सिराते मुस्तकीम पर हों, खुदा के रास्ते में, तो ठीक है उनसे मोहब्बत, खुदा की वजह से उनसे मोहब्बत भी सही। लेकिन अगर ये उस तरफ दूसरी तरफ चले जाए, खुदा से दुश्मनी करना शुरू कर दें, तो ये हो सकता है। अब ऐसे लोग अगर हो जाए कि जिनका मैार जो है दोस्ती का खुदा हो जाए, यानी खुदा महवरी दोस्ती के अंदर भी आ जाए, हर जगह जो है वो देखूँ खुदा कहाँ पर है, मेरी दोस्ती का मैार भी अगर खुदा हो जाए, तो उलाए का कतब अफी कुलू बहिम अलीमान, ये वो लोग हैं कि जिनके दिल पर जो है ईमान जो है, जैसे कहते हैं नक्श बस्ते, उसके अंदर जो साबित हो चुका है और जो खुदा ने उसको लिख दिया कि हाँ ये हकीकी मानों में जो है वो ईमान है, और इनके रूह रूह के जरिए से जो है वो, यानी खुदा अपने खास एक मखलूक के जरिए से उनकी कुमक करता है, और युदखिलुहुम जन्नात तजरी, उनको जो है वो जन्नत में दाखिल करता है। फिर आगे आखिर में आयत के आगे इरशाद होता है कि ये वो लोग हैं कि खुदा इनसे राजी है, और खुदा ये खुदा से राजी है, उलाए का हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला यानी खुदा की पार्टी जो है, हकीकत यही लोग हैं, ये है कि जो बाकी मानों में अपना वो कह सकते हैं हम खुदा वाले हैं, खुदाई हैं। यहाँ पे भी देखें वो फिक्र जो हमारी फिक्र है और वो फिक्र जो कि कुरानी फिक्र है, मुसलमानों की फिक्र से कितने मुख्तलिफ है। इसका मतलब है कि हमने कुरानी फिक्र को अपनी जिंदगी में कहीं भी जो है वो नाफिज नहीं किया, ना माल के अंदर, ना दोस्तियों के अंदर, ना अपने इज्तिमाही ताल्लुकात के अंदर, कहीं पर भी हमको ये फिक्र नजर नहीं आती। मैंने फिर एक आयात तो बहुत ज्यादा है, मैंने एक फहरिस्त जो है थोड़ी बहुत उसको बनाई थी, उसके अंदर एक मरूर करते हुए उसको खत्म करते हैं, और कभी मौका हुआ तो उस पर तफसीली जो है गुफ्तगू हो सकती है। मसलन हम देखें कि आप इक्तिसाद के अंदर आ जाए, इक्तिसादी लिहाज से, निज़ाम इक्तिसादी के अंदर हमारे पास जो मेयारत है, जो कुरानी जो हम फिक्र है, कुरान जिस तरह से इक्तिसाद को देखना चाहता है किसी माशरे की, उसके अंदर वो कहता है कि जो है इसके अंदर सबसे पहले चीज़ जो है वो अदल होना चाहिए, अदालत होनी चाहिए इसके अंदर, इस माशरे के अंदर जो क्लास डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इसके अंदर तवाजुन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक माशरा जो एक तबका जो है वो मालो दौलत को जमा करता चला जाए। जो आयात मजम्मत के अंदर है कि इंसान वो है कि जो माल से शदीद मोहब्बत करता है, जो आयात जो कि कंस के ऊपर है, ये जो अपने मालों को जमा करते रहते हैं, जमा करते रहते हैं, असल उसमें खर्च नहीं करते, यही मालिक है, जिस दिन एक दिन कयामत के दिन इसी को जो है उनके ऊपर जो है दाग करके, गर्म करके जो है वो उसका अजाब किया जाएगा। तो खुदा ऐसे माशरे को पसंद नहीं करता है एक के पास दौलत की अंबार लग जाए और एक बेचारा जो है वो फ़क्र के अंदर मुब्तला हो। इस क्लास डिफरेंस को जो है वो कुरान फिक्र के मुताबिक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसी तरह से वो माशरे जिसके अंदर रिबा हो, इसी रिबा के नतीजे में ये जो क्लास डिफरेंस है इसकी एक बड़ा आमिल ये रिबा है, कि इसी सूद जैसे कहते हैं कि जिस माशरे के अंदर है, और हम देख रहे हैं कि वो बड़े बड़े माशरे जो कि सरमायादारी निज़ाम जो कि इस रिबा के जिसके अंदर अहम तरीन उनसर जो है उसके अंदर वो यही रिबा है जिसके ऊपर चल रहे हैं, उसके अंदर आप देखें कितना ज्यादा ये क्लास डिफरेंस बढ़ता चला, हर रोज जो है बढ़ता चला आ रहा है, हर रोज जो कि वो लोग जिनके पास पैसा है वो ज्यादा मालदार होते चले आ रहे हैं, और ऊपर का जो तबका है जो है वो कम से कम जिन छोटे से छोटा तबका है लेकिन दौलत के लिहाज से, सरवत के लिहाज से सबसे ज्यादा, तो वो और इनके दरमियान जो कि माशरे के फकीर तरीन तबके जिनके पास जो है वो खाने के लिए जो कुछ नहीं है, ये जो डिफरेंस है बढ़ता चले आ रहा है। क्यों? इसकी एक आमल जो है वो रिबा, इसकी शदीद जो है खुदा ने मजम्मत की। इसी तरह से कहा कि अकल माल बिल बातिल जो है वो कुरान कहता है कि कुरान उस तरीके को पसंद नहीं करता कि इंसान बगैर कि किसी मेहनत के जो है बस पैसा कमाना चले, इसको दोबारा से इसका एक मजदा क्या है वही रिबा आ जाता है, कि इंसान पैसे के जरिए से बस पैसा जो है ऐसा मौजूद है, इसी पैसा खुद जो है पैसे को जनरेट करता रहे, ये असल कुरान के नज़दीक, इस्लाम के नज़दीक बातिल सिस्टम। ये नहीं हो सकता कि आप बगैर मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, काम के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सलाहियतों को डिपेंड करता है, उसको सही जगह पर इस्तेमाल करने, बातिल तरीके से आप बेहूदा तरीके से बगैर किसी मेहनत के इंसान जो है वो मालदार होते चला जाए, ये तरीका सही नहीं है। इसी तरह से वो इनफाक का भी कॉन्सेप्ट और माल का जो है वो अमानत वाला कॉन्सेप्ट, मसूलियत वाला, कि इंसान जो है वो ये कहे कि जो कुरान में कहा गया कि कहा जाएगा कयामत के दिन कि इनको रोको, उनसे सवाल किया जाएगा इनसे जो है ये मसूल है, ये कॉन्सेप्ट जो जब अगर हमारे इकतसाद के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाए और इंसान अपने आप को मसूल समझ लगे कि मैं फकत अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे माशरे के लिए भी मसूल हूँ, तो यहाँ पर इंसान पर दोबारा से इनफाक करता है। तो ये छोटी सी मिसाल है कि वो फिक्र फिक्र इक्तिसादी जो कुरान के अगर आ जाए तो माशरा फिर कितना मुनव्वर हो जाएगा, वो कितना उसके अंदर जो है सब चीज़ें जिस तरह से होनी चाहिए, और इंसान उससे इस माल और दौलत से सही इस्तेफादा करते हुए जो खुदा की तरफ बढ़ सकता है, उसके नज़दीक हो सकता है, वो उसमें माशरे में आना शुरू हो जाएगी। निज़ाम सियासी के अंदर आप देखें तो वहाँ पर भी ऐसा ही, कि उसके अंदर कहा गया कि हुकूमत इलाही जो है माशरे के अंदर होनी चाहिए, इसका हदफ क्या है कि इसके अंदर जो है वो हिदायत, और एक जैसे कहा गया इसका एक अहम तरीन हदफ ही कि ये माशरा जो है वो जब इन लोगों के हाथ में हुकूमत आती है जो सालेहीन है तो क्या करते हैं, इकामे सलात करते हैं इसके अंदर, यानी क्या मतलब इकामे सलात, यानी सबको बस वो उस माशरे के अंदर नमाज पढ़ी जाती है, नहीं, इकामे सलात से मुराद ये है कि पूरा माशरा नमाजी हो जाता है, नमाजी माशरे में और नमाज पढ़ने वाले माशरे में बहुत फर्क है। मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, वो शख्स भी नमाज पढ़ रहा है, सब नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन माशा मुमकिन है नमाजी ना हो। इसलिए कहा गया कि ये नहीं कहा गया कि नमाज लोग पढ़ना शुरू, बल्कि इकामा सलात की बात है। सलात क्या होती है? सलात यानी वो जिक्र का जो आला तरीन मजदाक है, ये खुदा की याद जैसे जिस माशरे में हो उसका एक अहम तरीन मजदाक नमाज है। तो पूरा माशरा जो है खुदा की याद में हो, जब खुदा की याद में होगा तो क्या होगा? जहरी बात है वो माशरा इसलाह के अंदर होगा, फलाह के अंदर होगा, सलाह के रास्ते पर होगा, सिरात मुस्तकीम पर होगा, जब उसके जहन में हमेशा और उसके दिल में जो है खुदा की याद होगी। तो ये हदफ इस माशरे का, हुकूमत का क्या होता है, माशरा जो इलाही हो जाए जिसके दिलों के, लोगों के दिलों में खुदा की याद है, और खुदा की याद के जरिए से फिर तमाम काम वो जहरी बात सिरात मुस्तकीम पर रहते हुए अंजाम देते हैं। इसी तरह से जो है इज्तमाही लिहाज से वो जो उखवत का कॉन्सेप्ट दिया कि तुम लोग जो है आपस में क्या हो, भाई भाई हो, तफरीके को जो है मिटाने की कोशिश की, और जबकि दूसरी तरफ जो है सारा जो कॉन्सेप्ट हो क्या इनफरादी जिंदगी पर है। अगर फिक्र कुरानी ना हो तो मेरे, अगर ये उखवत वाला कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट निकल जाए, ईसार वाला कॉन्सेप्ट निकल जाए, एक दूसरे की हेल्प करने वाला कॉन्सेप्ट निकल जाए, जो कहा कि वतावन और अलबिर व तकवा, इस्लाम के जो इज्तमाही निज़ाम इस पर कायम है कि एक दूसरे की हेल्प करो, किसी के अंदर तकवा के अंदर, नेकियों के अंदर, बिर के अंदर, ना कि बुराइयों के अंदर, ना कि मसलन मैं जो एक काम बुरा कर रहा हूँ तो मैं चाह ताकि जो है दूसरे भी इसके अंदर मुबतला हो जाए, ताकि कल को कोई मुझ पर जो है वो उंगली ना उठा के कितना बुरा है। मैं अगर करप्शन कर रहा हूँ तो दूसरों को भी इतना ज्यादा मुलवस कर दूँ करप्शन के अंदर, ताकि पूरा माशरा ही करप्ट हो जाए, और जो है फिर कोई ना कहे कि साहब तो कितना करप्ट है। नहीं, पूरा सभी जब करप्ट होंगे तो कौन किसी को कुछ कहेगा। तो तावन करो नेकियों के अंदर, तकवा के अंदर, एक दूसरे की हेल्प करो, एक दूसरे को जो है वो नेक बनाने की कोशिश करो, ना कि एक दूसरे का जो है बुराई के अंदर साथ देना शुरू कर दो। तो इस्लाम के जो कॉन्सेप्ट जो इज्तमाही लिहाज से उखुवत के ऊपर, इस तावन खैर के ऊपर, इन तमाम चीज़ों का अगर ये हमारे माशरे के अंदर आ जाए तो फिर वो माशरा कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि विलायत के हवाले से जो बात आती है, दोबारा से निज़ाम सियासी के अंदर चला जाएगा कि विलायत किसकी इंसान को कबूल करनी, खुदा की विलायत कबूल करनी है। वो जो विलायत जो गैर खुदा की विलायत है उसको किससे तशबीह दी गई, ये तो दरकीकत तो उस लाने अनकबूत जो है मकड़ी का जो जाल है उससे भी कितना कमज़ोर है, वो उससे भी ज़्यादा जो है कमज़ोर है। अगर तुम किसी और के ऊपर जो है वो एतमाद करते हो, किसी और पर भरोसा करते हो, ये तुम्हें भी कभी भी जो है वो रिलायबल नहीं है तुम्हारे लिए। और हम देख भी रहे हैं से कितनी जगह पर हम जब गैर खुदा पर एतमाद करते हैं तो कहाँ पर हमारा माशरा है। हम जो 70 साल से जो है वो गैर खुदा पर एतमाद करते हुए सिर्फ नाम खुदा रसूल का लेते हुए आ चले आ रहे हैं, और उसी बड़ी ताकत पे, दुनिया की जो बड़ी ताकत है उस पर एतमाद करते देखें नतीजा क्या, आज हमारा माशरा कितनी पस्ती के अंदर है। लेकिन वो एक माशरा जिसकी छोटी सी मिसाल, इसके अंदर ऐसा नहीं कह सकता है कि इंकलाब आने के बाद जो है पूरा माशरा उस तरह से 100% जो है वो इलाही हो गया, नहीं। लेकिन जिस हद तक भी उन्होंने खुदा से नजदीक होने की कोशिश की, कितना डिफरेंस है इन दोनों माशरों के अंदर। हमारी सरहदें भी बिल्कुल जो है मिलती हैं, हमसाया मुल्क है, लेकिन हम इन तासुब की निगाह से जब देखते हैं तो इन तमाम चीज़ों को जो है छोड़ देते हैं, बस हमको जो पसंद नहीं आता। हाँ, अगर कोई काम हम कर लें कोई अच्छा तो हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर दूसरा कोई अच्छा काम कर रहा है, इसकी अच्छाई को देख भी रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उस तासुब की बुनियाद पर कि एक और काम इसको जो हम निगलैक्ट कर देते हैं। लेकिन वाकई इंसान देखने की कोशिश करे कि जिन लोगों ने थोड़ा बहुत जो खुदा पे तवक्कुल करने की कोशिश की तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, इल्म के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में, दूसरे तमाम मेयारात के मुताबिक जो है वो आप देखें कि कितना वाज़ह फ़र्क है। अपने पैरों में वो कौम खड़ी होती है, खुदा के पर तवक्कुल करती है। अब यमन की मिसाल ले लें, दोबारा से हर बार यमन का नाम जहन में आता है, कितनी सिर्फ खुदा पर जो है तवक्कुल करने की बुनियाद पर वो पूरे जो है वो 7 साल से पूरी दुनिया से जो टक्कर लेने में कामयाब हो जाते हैं, और उनको जो है जलील करते हैं खुद इज्जत के साथ। मुमकिन है, यानी इसमें शक नहीं कि मुश्किल आते हैं, फ़क्र भी है, बीमारी भी है, उनको मरना भी है, सब कुछ है, लेकिन इज्जत है बुलाकर, वही जिसे कहते हैं मोहम्मद सैन ने कहा तो नारा था, इज्जत की मौत है। तो ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर, तो ये वाजे हमको नजर आता है कि अगर मिसालें ऐसी नहीं फकत थियोरेटिकल और किताबी मिसालों, नहीं, हमको नजर आती है अपनी जिंदगी में, फकत देखने की जरूरत है, उस पर ईमान लाने की जरूरत है। इसी तरह से कुरानी फिक्र के मुताबिक बदतरीन लोग कौन है, वो लोग जो अपनी अक्ल इस्तेमाल नहीं करते, शर्रुद्दवाब जो जो चलने फिरने वाली जो मखलूकात हैं, इसमें इंसान भी शामिल है बाकी जानवर में, बदतरीन कौन है जो अक्ल से काम नहीं लेते। तो इंसान इस मेयार को जब अपनी जिंदगी में देखे तो जरा सा गौर करने के, थोड़ा सा उस पर गौर करे तो उसको जरा जैसे एक धचका लगता है, बाबा यानी मुझे खुदा के मेयार के मुताबिक जो है बदतरीन मखलूक हूँ, खुदा ना करे। इंसान जरा गौर करने की कोशिश करता है, अकल को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। वो फिक्र जहाँ पे कुरान ना हो, वो फिक्र जो कि जुल्मानी हो, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इरशाद होता है कि आयत थी कि जहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, गुमान के पीछे जाते हैं, जन और गुमान, और शायद ऐसा है, और मतलब ये होगा वो, अकल की उसके अंदर कहीं भी नहीं, बुरहान कहीं नहीं, रीजनिंग कहीं पर भी नहीं, दलील कहीं पर भी नहीं, फकत हदसो गुमान के ऊपर उनकी जिंदगियाँ चल रही होती हैं। जबकि ये लोग क्या है, अकल से काम लेते हैं। खुदा कहते हैं देखो दलील कहाँ पर है, देखो किसी बात को कबूल के अंदर बुरहान को देखो क्या है, मंतिकी फिक्र करने की कोशिश करो, अकल के तौर पर फिक्र करने की कोशिश करो, ये कुरानी तरीका है। उसके मुकाबले वो गैर, वो जो जुर्मानी तरीका है वहाँ पे, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हमको नज़र आती हैं, मेरे ख्याल में शायद काफ़ी ज़्यादा वक्त हो गया, आप ख़त्म करना चाहिए। एक चीज़ जो कल परसों और तरसों के हवाले से जो तीन शबे हैं जो इमाम अली अलैहिस्सलाम से मंसूब हैं, तो इस हवाले से अगर आप लोगों के पास सजेशन हो एक तो टाइम के हवाले से कि अच्छा पहले तो सबसे पहले कि आया इन 3 दिनों में हमको या शबाए कदर के अंदर असलन आप लोग चाहेंगे कि इसको कंटिन्यू किया जाए या नहीं चाहेंगे, अगर तो चाह रहे हैं तो फिर अगला मसला जो है डिस्कस किया। काफ़ी लोग जो हैं शायद जा भी चुके हैं, काफ़ी देर हो गई शायद, लेकिन जो लोग मौजूद हैं कम से कम अगर अपनी राय दे सकें।
मेरी तरफ से इन 3 रातों के लिए डिफरेंट टॉपिक रख लें ताकि जो लोग पार्टिसिपेट ना कर रहे हैं वो 3 दिन बाद दोबारा कंटिन्यू कर सकें।
सही है, ठीक है। तो एक साहब फाखर साहब भाई कह रहे हैं कि इसको थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर लें, मसला नहीं है, इसको हम आधा घंटा पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं, आधा घंटा काफी है।